शांति, ओम शांति, ओम शांति। योग के द्वारा आत्मा की बैटरी कैसे चार्ज करें? पूरे कल्प में पाठ बजाते बजाते जब हम कलयुग के अंत में पहुंचते हैं तो आत्मा की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है। पूरी डिस्चार्ज होने के लिए जब लगती हैं तो शक्तियों के सागर बाबा संगम युग में हमें आत्मा की बैटरी पुनः चार्ज करने के लिए गोल्डन चांस देते हैं, क्योंकि ये चांस सारे क्लब में एक ही बार हमें मिलता है। इसलिए बैटरी हमारी डिस्चार्ज कैसे होती है इसको पहले हम जानें, क्योंकि सतयुग में हर आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। वहां कोई भी हम विकर्म नहीं करते हैं, हमेशा अच्छे कर्म ही करते हैं, फिर भी आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरती आती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सतयुग में हमारे मन में विशेष दो प्रकार के संकल्प चलते रहते हैं। पहला प्रकार है आत्मा सत्वपदान होने के कारण हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करती हैं, दिव्य गुणों से संपन्न होती हैं, तो सकारात्मक और श्रेष्ठ संकल्पों का प्रवाह मन में सदा चलता रहता है। लेकिन दूसरा प्रकार कर्म करने के लिए संकल्प करना, क्योंकि हम अपने लिए औरों के लिए जो भी हम कर्म करते हैं सारे दिन भर में उसके प्रति संकल्प हमारे मन में चलते हैं, उससे आत्मा की ऊर्जा थोड़ी थोड़ी खर्च होती जाती है। इसलिए सतयुग में 8 जन्म में केवल 2 कलाएं ही हम यूज करते हैं, और वही सिलसिला त्रेता युग में भी चलता है। हमेशा पवित्र संकल्प और कर्म करने के लिए संकल्प चलते थे, इसलिए 2 कलाएं हमने त्रेता में यूज की। लेकिन जैसे हमने द्वापर में प्रवेश किया, माया का हल्का प्रहार आत्मा पर होने लगा तो 2 प्रकार के संकल्प और उसमें ऐड हो गए, नकारात्मक संकल्प और व्यर्थ संकल्प चलना मन में शुरू हुआ। उसके कारण आत्मा की ऊर्जा बहुत खर्च होती रही। 2 कला के बजाय 4 कलाएं हमने यूज की द्वापर में, और कलयुग में माया का बहुत गहरा प्रभाव था, उसके कारण हमेशा कर्म करने के लिए संकल्प करना, व्यर्थ संकल्प चलते रहना और नेगेटिव संकल्प चलते रहना, यह सिलसिला चालू रहा। उसके कारण 0 तक आत्मा पहुंचने वाली ही थी। तो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया कि अभी अपनी बैटरी को चार्ज राजयोग के द्वारा करो, अभी ये समय है बैटरी को पुनः चार्ज करने का। तो पुनः बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या प्रसाद करना होगा, कैसे बैटरी आत्मा की चार्ज होती है, इस प्रक्रिया को यथार्थ रीति से जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी ये बल्ब जल रहा है, उदाहरण लीजिए, बल्ब में लाइट है, कहां से इलेक्ट्रिक पावर आ रही है, पावर हाउस से आ रही है, कैसे आ रही है, वायर के माध्यम से आ रही है, और वो ऊर्जा जब बल्ब में आती है तो लाइट के रूप में दिखाई देती है। तो ऐसे ही आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए बुद्धि रूपी तार, परमात्मा जो शक्तियों के पावर हाउस हैं, स्पिरिचुअल शक्तियों के अथाह सागर हैं, उनसे जब बुद्धि रूपी तार जुड़ जाती हैं, तो मन मन मनाभाव का मंत्र जाप करने लगता है। मन में जो भी संकल्प चलते हैं बाबा के प्रति, उस संकल्प के माध्यम से आत्मा में शक्तियां आती रहती हैं। संकल्प के माध्यम से शक्तियां आती हैं और संकल्प के माध्यम से ही शक्तियां खर्च होती हैं। तो बैटरी चार्ज करने के लिए हमें मन मनाभाव का मंत्र का जाप अच्छी तरह से करते रहना बहुत जरूरी है। और जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं, दूसरे तरफ तीन प्रकार के हमारे मन में संकल्प चलते रहते हैं, जिससे आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे खर्च भी होती रहती है। उसमें पहला प्रकार है कर्म करने के लिए संकल्प चलना, उससे धीरे धीरे हमारी शक्तियां यूज होती हैं, वो संकल्प तो हमें अति आवश्यक है। लेकिन दूसरा जो संकल्पों का प्रकार है वो है नेगेटिव संकल्प चलना, विकारों का अभी भी हमारी आत्मा पर प्रभाव है, पुराने संस्कार हैं, उसके आधार से हमारे मन में समय प्रति समय नेगेटिव संकल्प, नकारात्मक संकल्प चलते ही रहते हैं। उससे आत्मा की बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए नकारात्मक संकल्पों को सकारात्मक में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहें, तो धीरे धीरे हमारे मन में पवित्र संकल्प चलते रहते हैं। दूसरी बात, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक सदा रहे, क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं, किसी की परिस्थिति को भी निहारते हैं, तो पहले हमारे मन में नेगेटिव संकल्प चलते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है द्वापर युग से, क्योंकि माया ने हमें नेगेटिविटी का चश्मा सौगात में दिया है, वह हम अपने तीसरे नेत्र पर लगाकर रखते हैं, जिससे नकारात्मक संकल्प स्वतः ही चल पड़ते हैं। अभी उस चश्मे को हमें फेंक देना है और बाबा ने जो हमें पॉजिटिविटी का चश्मा दिया है उसको हमें पहनकर रखना है। हमें पॉजिटिविटी ही देखनी है और हमारी दृष्टि को गुण ग्राहक दृष्टि बनाते रहना है। हमें कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखना है, क्योंकि कभी भी किसी की कमी देखते हैं तो कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। इसलिए इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसमें कोई ना कोई विशेषता ना हो। इसलिए हमारी दृष्टि हमेशा विशेषता को देखने वाली हो। और तीसरा प्रकार है व्यर्थ संकल्प मन में चलना। कोई भी ऐसी समस्या हमारे सामने आती है, कोई भी विघ्न आता है, आपस में हमारा मन मिटा होता है, आपस में हमारा किसी से टकराव होता है, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है और व्यर्थ संकल्प के तूफान से आत्मा की बहुत ऊर्जा व्यर्थ होती है, नष्ट होती है। इसलिए बाबा भी वतन से देख रहे हैं कि मेरे बच्चे आत्मा की बैटरी चार्ज कर रहे हैं योगाभ्यास से। एक तरफ तो चार्ज कर रहे हैं और दूसरे तरफ व्यर्थ के लीकेज से शक्तियां भी लीकेज हो रही हैं। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है अभी व्यर्थ को स्टॉप करो। लेकिन हमें पहले ये चेक करना है व्यर्थ संकल्प किसको कहते हैं। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मेरे सामने पानी का ग्लास पड़ा है, मुझे प्यास लगी हुई है, तो लेकिन मैं आज थोड़ा सा सुस्त हूं, तो संकल्प करता हूं पानी पीना है, पानी पीना है। आठ संकल्प किए पानी पीना है, लेकिन पानी पीना शुरू नहीं किया है। और जब नौवां संकल्प किया, पानी का ग्लास उठाकर पानी पीना शुरू किया। इसका मतलब आठ व्यर्थ संकल्प मेरे मन में चले जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए बार बार संकल्प करते रहना ये व्यर्थ के खाते में जाता है, जिससे आत्मा को खोखलेपन की महसूसता भी होती है। इसलिए व्यर्थ को स्टॉप करने के लिए तीन युक्तियों को अपनाएं। पहली युक्ति है, कोई भी हमें मिलता है तो आत्मा की बिंदी अपने मस्तक पर लगाएं और सामने वाले व्यक्ति के मस्तक पर भी आत्मा की बिंदु लगाएं। फुल स्टॉप लगाएं तो व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगता है। अगर हम उस व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते हैं, ये व्यक्ति कौन है, इसका नाम क्या है, इसमें क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या अवगुण हैं, बिना मतलब 5-7 संकल्प चल पड़ते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी युक्ति है ड्रामा का फुल स्टॉप लगाते रहना, क्योंकि ड्रामा में जब भी कोई अप्रिय घटना या बहुत प्रिय घटना होती है तो हमारे मन में बहुत संकल्प चलते हैं और उन संकल्पों के द्वारा आत्मा की बहुत शक्तियां ह्रास होती है, नष्ट होती है। इसलिए हमें ड्रामा का ज्ञान तो है लेकिन ड्रामा के ज्ञान को यूज करते रहना ये सीखना है। ड्रामा, मां शब्द उसमें अंतर्निहित है, ब्रह्मा, ब्रह्मा मां है जिसके द्वारा हमें जन्म मिला है, ड्रामा भी हमारी मां है जो हमारी पालना करती है, व्यर्थ से हमें हमेशा सेफ रखती है। इसलिए ड्रामा की बिंदी लगाकर नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का करें। नथिंग न्यू का पार्ट जब हम पक्का करते हैं तो व्यर्थ संकल्प चलना बंद हो जाते हैं। तीसरी युक्ति है मन का काम है सोचते रहना। अगर मन बहुत संकल्प व्यर्थ सोचता रहता है तो व्यर्थ संकल्पों के प्रवाह को समर्थ की ओर अगर हमें मोड़ना है उसके लिए आवश्यकता है मनन चिंतन करने का अभ्यास बढ़ाते रहना। जब मन को हम ज्ञान का भोजन खिलाते हैं तो मन शक्तिशाली संकल्प सकारात्मक संकल्प सोचता रहता है जिससे व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे मिटने लगते हैं। तो किसी भी हालत में हमें व्यर्थ के लीकेज को बंद करना जरूरी है, ये बहुत हमें नुकसान पहुंचाता है। अभी योगाभ्यास हम हर रोज करते हैं, बाबा से शक्तियां लेते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, कई वर्ष लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? मोबाइल के बैटरी 2 घंटे में चार्ज होती है और ये शरीर रूपी मोबाइल की आत्मा की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए कई वर्ष लगते हैं। इसका कारण क्या है? एक तरफ योगाभ्यास के द्वारा हम थोड़ी सी शक्तियां जमा करते हैं और दूसरे तरफ सारे दिन भर में उन खर्चियों को उन शक्तियों को खर्च भी करते हैं तो हमारे पास जमा का खाता नहीं रहता है। जब तक जमा का खाता शक्तियों का नहीं बढ़ता है तब तक ऊर्जा की लेवल नहीं बढ़ती है। इसलिए हमेशा 3 बातें चेक करें, कितनी मेरी अर्निंग है अर्थात कमाई है और कितनी मेरी स्पेंडिंग है, खर्च मेरा कितना है, और तीसरी बात कितनी मेरी सेविंग है। ये बार बार 3 बातों को चेक करते रहना है क्योंकि संगम युग है शक्तियों को जमा करने का युग। इसलिए मेरी कमाई बहुत हो, शक्तियों का स्टॉक मेरे पास बहुत जमा होता रहे और स्पेंडिंग अर्थात खर्च बहुत कम हो, जिसको बाबा कहते इकोनॉमी के अवतार बनो। शक्तियों को कम से कम खर्च करो तो स्वतः ही शक्तियों का स्टॉक जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए समय की पुकार है, साधारण योगाभ्यास के बजाय ज्वालामुखी योगाभ्यास बढ़ाते रहना, सचमुच शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाते रहना। ये बाबा ने बार बार हमें इशारा दिया है, क्योंकि जब हम अमृत वेले का योगाभ्यास करते हैं या नुमा शाम का योगाभ्यास करते हैं, वो हर संभव हमें शक्तिशाली योगाभ्यास के रूप में ही करना है, साधारण योगाभ्यास हमारा नहीं हो। तो ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए हमें परमधाम में बाबा का स्वरूप बहुत शक्तिशाली देखना भी है और अनुभव भी करना है, क्योंकि बाबा भगवान को हमने बाबा कह के ऑर्डिनरी बना दिया है। भगवान किसको कहते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी जो हस्ती है, दुनिया की सबसे बड़ी जो सत्ता है, जो आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे से ये सारा संसार चल रहा है, उस हस्ती को भगवान कहते हैं। तो वो हस्ती अर्थात उनका स्वरूप कैसा होगा? बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत प्रखर भी होगा। तो इसलिए हमें परमधाम में बाबा का स्वरूप बहुत प्रखर और शक्तिशाली देखना भी है और अनुभव भी करना है। और बाबा के सामने जब हम बैठते हैं, हमारे मन की बैठक भी पावरफुल होना जरूरी है। अगर साधारण बैठक में हम बैठते हैं तो हमें बाबा से थोड़ी ही शक्तियां मिलेगी। तो इसलिए शक्तिशाली बैठक मन की होना जरूरी है, अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा समझें, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा समझें या शक्तिशाली आत्मा समझें। इस रूप में जब हम बैठते हैं तो स्वतः ही बाबा से अथाह शक्तियां हम आत्मा में ग्रहण करने लगते हैं, और जब प्रचंड शक्तियां आत्मा में भरने लगती हैं तो प्रखर योग की अग्नि की अनुभूति हमें होती है। हम मधुबन निवासी एक बार बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे तो बाबा से एक प्रश्न पूछा था कि बाबा मेरी याद शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझें, उसकी क्या निशानी है? तो बाबा ने शक्तिशाली याद की दो निशानियां बताई थी। शक्तिशाली याद में एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है, जिसमें हमारे पुराने विकर्म भस्म होते हैं, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि विकर्मों का बोझा कम होने लगता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम संपूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये दो प्रकार की अनुभूतियां हमें होती चाहिए। तो समझें, हमारी योगाभ्यास की जो प्रैक्टिस है वो शक्तिशाली है, और आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए सारे दिन भर में स्वमानधारी होकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक आत्मा में असीम शक्तियां सुषुप्त रूप में, मार्ज रूप में हमेशा रहती हैं। लेकिन आवश्यकता है उन शक्तियों को जगाने की। जब हम स्वमान में रहते हैं तो सोई हुई शक्तियां स्वतः ही उभरने लगती हैं, स्वतः ही जागृत होने लगती हैं और ऊर्जा की लेवल बढ़ने लगती हैं और तेजी से आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती हैं। क्योंकि हम देखते हैं स्वमान की बात को हम थोड़ा हल्का लेते हैं, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का सीक्रेट यही है, सदा स्वमानधारी होकर रहना, स्वमान के सिंहासन पर हमेशा बैठे रहना, तभी हमें बहुत अच्छा ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुशी की अनुभूति होती है, जिससे हमारा मन बुद्धि सदैव हल्की रहती है और बाबा के पास उड़ती रहती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि सदा स्वमान में स्थित रहकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहें और सवेरे शाम जो हम योगाभ्यास करते हैं उसको शक्तिशाली रूप में अनुभव करें। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करने जा रहे हैं। बोलो करना चाहेंगे सभी? हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो कोई भी बीच में उठ के डिस्टर्ब नहीं करेंगे सभा को। चंद घड़ियों के लिए हम बहुत ही गहन अनुभूति में खो जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों फैलाए, मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों सुंदर आभा मंडल लाइट का ओरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ, पवित्रता का प्रकाश फैलाते हुए पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्म ज्योति ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। ज्योति सागर शिव पिता की संतान हूं। मैं आत्म ज्योति देह रूपी दीपक से न्यारी होकर ज्योति धाम की ओर जा रही हूं। बुद्धि बल से उड़ती हुई ज्योति धाम की ओर जा रही हूं। इन पांच तत्वों से पार नीले आकाश से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकी ली, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति मीठे शिव बाबा भी उनके ब्रुकटी में दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता शक्ति सागर बाप से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही। ज्योति धाम में पहुंच गई। कितना प्यारा है यह दिव्य ज्योति धाम। चारों ओर सुनहरी लाल है लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। ओहो, ज्योति सागर बाबा, महाज्योति बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति महाज्योति बाबा को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं। एक टक देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा है। महाज्योति बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तिशाली किरणों की वर्षा, प्रखर किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर निरंतर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य बाबा से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी शक्तियों से भरपूर हो रही है, संपन्न हो रही है। बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों के सागर से निरंतर शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रहे, होती जा रही है। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, समाई रहूं, डूबी रहूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति महा ज्योति परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं। मुझ मास्टर शक्तिवान आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही हैं, वायुमंडल को प्रकंपित कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ज्योति सागर शिव पिता की मैं आत्म ज्योति आत्मा प्यारी संतान। ओम शांति शांति शांति।